अब जैसे ही आस्था ने जिद पर अड़ते हुए ये कहा, तो वैसे ही अरमान इमोशनल होकर आस्था को अपनी गहरी नज़रों से एकटक देखता रहा। अचानक से अरमान उठ खड़ा हुआ और तुरंत आस्था के करीब जाकर उसके गालों को छूकर उसने अपने होठों को आस्था के होठों पर रख दिया था और उसे हार्डली किस करने लगा। आस्था सांस लेने के लिए स्ट्रगल कर रही थी, लेकिन फिर अचानक वो भी अरमान का साथ देने लगी। धीरे धीरे उसका इमोशनल मोमेंट कब प्यार भरा मोमेंट बन गया, इसका दोनों को ही अंदाज़ा नहीं था। दोनों ही एक दूसरे के प्यार में पूरी तरह से खो गए थे और जल्दी ही आस्था की मधोशी भरी आवाज़ें वहाँ गूंजने लगी थीं। कितनी ही देर तक अरमान आस्था को प्यार करता रहा था और उसके प्यार करने के बाद उसने आस्था को अपने ऊपर ही लिटा लिया और बड़ी ही प्यार से अपनी उंगलियों से उसके बालों के साथ खेलते हुए बोला, जानती हो आफत, तुम्हारे बिना मैं भी एक पल नहीं रह सकता हूँ, लेकिन तुम्हारा भाई है ना अविनाश, तुम तो जानती हो कि काफ़ी टाइम से वो तुम्हें अपने साथ ले जाने की जिद कर रहा था। जब से उसने मुझे बताया कि तुम्हारे दादाजी की तबीयत कुछ ज़्यादा ही बिगड़ गई है, तब मुझे लगा कि मुझे अपने स्वार्थ के लिए तुम्हें अपने पास नहीं रोकना चाहिए। और फिर कुछ दिनों की ही तो बात है, तुम केवल 15 से 20 दिन के लिए चली जाओ और उसके बाद जब भी तुम्हारा दिल चाहे तो मुझे फ़ोन कर देना, मैं खुद तुम्हें वहाँ लेने के लिए जाऊँगा, ठीक है? अरमान बड़े ही जेंटल टोन में आस्था से बातें कर रहा था, क्योंकि वो आस्था को बिल्कुल भी इस बात की भनक नहीं लगने देना चाहता था कि वो आस्था को सिक्योरिटी रीज़न की वजह से वहाँ से भेज रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं अरमान को डर लग रहा था। अरमान सिंघानिया द डेविल किंग को पहली बार डर लग रहा था कि कहीं कोई उससे उसकी आस्था के अंश को ना छीन ले। आस्था को सेफ जोन में पहुँचाने के बाद वो ब्लैक डेविल का खात्मा करना चाहता था, क्योंकि जिस तरह से ब्लैक डेविल ने अंश की किडनैपिंग उसी के घर से करवा दी, तो ये बात इस बात का सबूत थी कि ब्लैक डेविल कितना ज़्यादा पावरफुल हो चुका है और अरमान अब आस्था को किसी भी खतरे में नहीं डालना चाहता था। और वैसे भी आस्था और अंश अरमान की सबसे बड़ी कमजोरी थे, वो अपनी कमजोरी को इस तरह से ब्लैक डेविल की ताकत नहीं बनने देना चाहता था। फिलहाल भले ही आस्था की फ़ोटो कहीं भी किसी भी न्यूज़पेपर या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मौजूद नहीं थी, और अगर अरमान की बीवी की हैसियत से किसी की फ़ोटो थी तो वो फ़ोटो थी सिर्फ प्रियंका की, जो कभी आस्था की ममेरी बहन थी। और अरमान ने जानबूझकर आस्था की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए उसने कहीं भी आस्था की कोई फ़ोटोज़ ऐड नहीं करवाई थी, और ना ही अरमान के खास लोगों के अलावा किसी को भी नहीं पता था कि अरमान की बीवी दिखती कैसी है। फिलहाल आस्था ने एक आह भरी और अरमान को खोने से डर से जो थोड़ी देर पहले उसका दिल घबरा रहा था वो एक पल में ही शांत हो गया था। अरमान से बातें करने के बाद उसे इस बात का एहसास हो गया कि अरमान उसे खुद से दूर नहीं कर रहा है, और वो उसे इग्नोर भी इसीलिए कर रहा था क्योंकि वो खुद उसे खुद से दूर नहीं भेजना चाहता, लेकिन उसके दादाजी और अविनाश भैया की वजह से उसे आस्था को वहां मजबूरन भेजना पड़ रहा है। अरमान की बातें सुनकर आस्था ने पलक झपकाते हुए हामी भरी, फिर धीरे से मुस्कुराई और एकदम से बोली, आप देखिएगा हम बहुत जल्द लौट आएंगे, ठीक है? और अगर यही बात थी तो आप हमें सीधे तरीके से बता देते, हमें इतना परेशान करने की क्या जरूरत थी आपको? आस्था ने अरमान के ऊपर लेटे लेटे ही एक दो बार उसके चेस्ट पर मुक्के मारे थे और उसकी बातों पर अरमान हल्का सा मुस्कुरा उठा था, और एक बार फिर अरमान ने उसे अपनी बाहों में कसकर भर लिया था और आस्था के होठों की ओर झुकने लगा था। वहीं दूसरी ओर हॉल में इस वक्त सभी लोगों को इस बात के बारे में पता चल चुका था कि अरमान ने आस्था और अंश को जाने की परमिशन दे दी है, तो सभी का चेहरा मुरझाया हुआ था। वहीं राधिका, रश्मि, साथ साथ वंशिका और रौनक, उनकी तो आंखों में आंसू बेकाबू होकर बहने लगे थे, और रौनक तुरंत ही आहान को देखकर नाक सिकोड़कर बोली, ऐसा कैसे हो सकता है, हम उसके बिना कैसे रहेंगे, और ये अरमान भाई को अचानक से क्या हुआ, उन्होंने अचानक से ये फैसला क्यों किया, कहां तो वो एक मिनट के लिए भी आस्था को अपनी आंखों के सामने से दूर नहीं करना चाहते थे, और कहां उन्होंने अचानक आस्था को अविनाश भैया के साथ भेजने का प्लान बना लिया। जब से सभी लड़कियों को ये पता चला था कि अविनाश आस्था का भाई है, तब से वो सब भी अविनाश को भैया कहकर ही पुकारा करती थीं। वहीं अविनाश जैसी उनकी शिकायतें सुनी तो वैसे ही वो अब थोड़ा सा नाराज होकर बोला, अरे रौनक, तुम ये कैसी बातें कर रही हो, तुम तो जानती हो ना कि मैं अपने दादाजी और अपना बिजनेस काम धाम सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ तुम लोगों के साथ रह रहा हूँ सिर्फ इसी उम्मीद में कि एक दिन अरमान आस्था को मेरे साथ जाने देगा, और मैंने अपने दादाजी से वादा किया है कि जब तक आस्था को मैं अपने साथ लेकर नहीं आऊँगा तब तक मैं उन्हें अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा, और मेरे दादाजी काफ़ी ज़्यादा बीमार हैं और वो आस्था को डेस्परेटली देखना चाहते हैं, इसीलिए मैं आस्था और अंश को अपने साथ लेकर जाना चाहता हूँ, और अरमान ने मेरी ये बात समझी है और इसीलिए वो आस्था को मेरे साथ भेजने के लिए तैयार भी हुआ है, प्लीज़ समझने की कोशिश करो। कहीं ना कहीं रौनक के सवालों ने अविनाश का मूड और भी ज़्यादा ख़राब कर दिया था। हालांकि आकाश, सुमित, ध्रुव, वाहन, वो चारों इस बात को अच्छी तरह से वाकिफ थे कि अगर आस्था और अंश को अरमान इस तरह से भेज रहा है तो इसका रीज़न आस्था के दादाजी तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते, लेकिन अगले ही पल उन्होंने सोचा, आस्था के दादाजी जिन्होंने बचपन से लेकर आस्था को अब तक नहीं देखा था, वो आस्था का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। थे, तो उन्हें भी अरमान का फैसला ठीक लग रहा था कि आस्था को कुछ दिनों के लिए उनके पास भेज देना चाहिए और आस्था और अंश के चले जाने के बाद वो फिर अच्छी तरह से ब्लैक डेविल का मुकाबला करेंगे। फिलहाल नानी माँ मुरझाए हुए चेहरे के साथ वहाँ चुपचाप बैठी हुई थी और तब अविनाश उनके पास आकर घुटनों के बल बैठा और धीरे से शांत आवाज में उनका हाथ थामते हुए उनसे बोला, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ नानी माँ कि इस वक्त आपके दिमाग में क्या चल रहा है। आपको शुरू से ही इस बात का डर लगता था कि एक दिन मैं आपसे आपकी गोरी छीन लूंगा, लेकिन मैंने आपसे पहले भी वादा किया था कि ऐसा कभी भी नहीं होगा, तो इसीलिए आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आप भी हमारे साथ ऑस्ट्रेलिया चल रही हैं। जैसे ही अचानक अविनाश ने नानी माँ को ये कहा, वैसे ही सब लोगों का चेहरा एक पल के लिए ठिठक गया और सबके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। ये सुनकर वहाँ की हवा कुछ पल के लिए जैसे ठहर सी गई हो। अगले ही पल रौनक तुरंत ही अविनाश को वहाँ से हटाकर नानी माँ के सामने जाकर खड़ी हो गई और दोनों हाथ हवा में फैलाते हुए अविनाश को रोकते हुए बोली, नहीं नहीं अविनाश भैया, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? हम नानी माँ के बिना नहीं रह सकते हैं। क्या आपको पता नहीं है कि इस वक्त मेरी क्या सिचुएशन है, मेरा कौन सा टाइम चल रहा है और इस वक्त नानी माँ का हमारे आसपास होना कितना ज्यादा जरूरी है। वहीं रश्मि और राधिका भी रौनक के आसपास आकर खड़ी हो गई थी और वंशिका ने तो अविनाश का हाथ ही पकड़ लिया था और धीमी आवाज में रिक्वेस्ट करते हुए बोली, अविनाश भाई आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? वैसे भी आप आस्था और अंश को हमसे दूर लेकर जा रहे हैं, तो फिर अब आप हमारी तोप नानी माँ को भी हमसे दूर क्यों करना चाहते हैं? जिस तरह से आहान ने नानी माँ का नाम तोप नानी माँ रख दिया था, तो बाकी सब भी नानी माँ को तोप नानी माँ कहकर ही पुकारा करते थे।
अब नानी माँ अपने लिए सब बच्चों को इस तरह से झगड़ते हुए देखकर कहीं ना कहीं मुस्कुरा भी रही थी और मन ही मन वो खुशी भी हो रही थी, क्योंकि आस्था के जैसे ही वो बाकी सारी लड़कियों से भी प्यार करती थी, तो इसीलिए नानी माँ काफी ज्यादा इमोशनल भी हो रही थी। तभी आहान अगले ही पल आगे आया और उसने धीमी आवाज में उसे समझाया, अविनाश भैया देखिए, अरमान भाई ने मेरे चैंप और भाभी को आपके साथ जाने की परमिशन दे दी है, लेकिन नानी माँ को मैं आपके साथ जाने की परमिशन कभी भी नहीं दूंगा। नानी माँ के दिल की हालत बड़ी ही अजीब हो गई थी, क्योंकि वो आस्था के बिना भी रहना नहीं चाहती थी, लेकिन उन सबसे भी उन्हें गहरी मोहब्बत हो गई थी, इसीलिए नानी माँ बड़ी बड़ी आंखों से सबको आश्चर्य से देख रही थी। अचानक से वो सबको शांत कराने लगी, अरे अरे बच्चों, आप इस तरह से हमारे लिए क्यों झगड़ रहे हैं, और वैसे भी हम आप सबको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। फिर वो नानी माँ अविनाश की ओर देखकर चंचलता से बोली, अविनाश बिटवा, कुछ दिनों की ही तो बात है और फिर गोरी कौन सा हमेशा के लिए वहां जा रही है, सिर्फ हफ्ता 15 दिन के लिए जा रही है, तो वो अपने दादाजी से मिलकर वापस आ जाएगी, और वैसे भी रौनक बिटिया और रश्मि बिटिया को हमारी जरूरत है, तो हम उन्हें छोड़कर इस वक्त कहीं नहीं जा सकते। जैसे ही नानी माँ ने ये कहा, वैसे ही रौनक और रश्मि दोनों ही इमोशनल हो गई थीं। थोड़ा आगे बढ़कर उन्होंने नानी माँ को गले से लगाया और उनके माथे पर किस करके बोली, सच में नानी माँ, जब से आप हमारी जिंदगी में आई हैं, हमारी जिंदगी में बड़ों की जो कमी थी वो कमी पूरी हो गई है, और आपकी जितनी क्यूट और स्वीट नानी माँ इस दुनिया में कोई और हो नहीं सकती है। कहीं ना कहीं नानी माँ का फैसला सुनकर सभी को काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था। जिस तरह से नानी माँ का लगाव आस्था से कुछ ज्यादा था, लेकिन नानी माँ ने सभी को बराबर इक्वली प्यार दिया, सबको अपने दिल में जगह दी, ये बात सभी को काफी हद तक अच्छी लग रही थी। वहीं आकाश और सुमित दोनों बार बार एक दूसरे की ओर ही देखे जा रहे थे, क्योंकि दोनों ही समझ चुके थे कि शायद अब ऐसा खतरा आने वाला है जिसका कोई अंदाजा नहीं लग सकता। वहीं दूसरी ओर दादाजी को इस वक्त कुछ भी नहीं पता था कि अरमान ने आस्था को उसके मायके जाने की इजाजत दे दी थी। दादाजी वो इस वक्त अभिमान जी के साथ अपना सर झुकाकर बेचैनी से बैठे हुए थे। दोनों को देखकर साफ पता चल रहा था कि इन दोनों के बीच कुछ ऐसी बातें डिस्कस हुई हैं जो काफी गंभीर थीं। दादाजी की आंखें इस वक्त गुस्से और नफरत, साथ ही साथ स्नेह के मिले जुले भाव से भरी हुई थीं। वहीं अभिमान जी के हाथों में इस वक्त एक पीले रंग का लिफाफा था, जिसे देखकर बार बार उनकी आंखें इमोशन से भर रही थीं। तभी दादाजी ने गहरी सांस लेते हुए उन्हें समझाया, बेटा मुझे लगता है कि तुझे एक बार और तसल्ली करनी चाहिए, क्योंकि वसुंधरा जैसी चालबाज औरत कुछ भी कर सकती है। तभी अभिमान ने सिर हिलाया, अपने पिता को गले से लगाकर उदास मन से बोले, काश आपकी बात सच होती पिताजी, काश आपकी बात सच होती, लेकिन ऐसा नहीं है, यही सच है। उस दिन फार्म हाउस पर फ्लैशबैक, जिस दिन वसुंधरा ने अभिमान जी से अकेले में बातचीत की थी, उस वक्त वसुंधरा ने एक बहुत बड़े राज का खुलासा किया था। वसुंधरा ने अभिमान को बताया था कि वीर अभिमान का बायोलॉजिकल बेटा है, वो अमरेंद्र का बेटा नहीं है। तब ये सुनकर अभिमान जी का गुस्सा सातवें आसमान पर जा पहुंचा था। उन्होंने खींचकर एक तमाचा वसुंधरा के मुंह पर दे मारा और तिलमिलाकर उसे बोले, तुझ जैसी चालबाज और धोखेबाज औरत मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कहीं नहीं देखी है, उस दिन जब तू अपने यार के साथ मेरी जिंदगी से जा रही थी, तू खुद मुझे मुंह पर बोलकर गई थी कि तू उसके बच्चे की माँ बनने वाली है और इसीलिए तू उससे शादी भी करना चाहती थी। इतना कहकर अभिमान चुप हो गए और वसुंधरा की ओर नफरत भरी नजरों से देखने लगे। अभिमान जी के शब्द सुनते ही वसुंधरा मगरमच्छ के आंसू बहाने लगी और उसने अभिमान जी के पैर पकड़ लिए और उनसे माफी मांगते हुए बोली, मैं मानती हूं कि मैंने अमरेंद्र के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाया था, लेकिन उसी ने मुझे पहले फोर्स किया था। उसी ने मुझे कुछ इस तरह के ड्रग्स दिए थे जिससे मैं सिर्फ उसी के साथ ही खुश रहती थी और तुम सबको देखकर मैं एकदम भड़क जाया करती थी। और जब मुझे उसकी अय्याशियों के बारे में पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। और ये सच है कि वीर तुम्हारा ही बेटा है अभिमान। अगर तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं है तो तुम डीएनए टेस्ट करवा सकते हो। और तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, उस वक्त मैं अमरेंद्र के साथ उसकी दौलत, शोहरत और उसका पैसा देखकर उसके साथ भागी थी। उसने सिर्फ तुमसे बदला लेने के लिए मेरे साथ प्यार मोहब्बत का दिखावा किया था। मुझे अंदाजा हो गया कि बात वो मेरा इस्तेमाल करके मुझे छोड़ देगा। और जब मुझे पता चला कि अमरेंद्र डेस्परेटली बाप बनना चाहता है और उसकी दो बीवियों से भी उसकी कोई औलाद नहीं हुई थी और वो काफी सालों से बच्चे के लिए तरस रहा था, तब मैंने तुम्हारे बच्चे का इस्तेमाल किया ताकि अमरेंद्र मुझे कोई धोखा न दे। और जैसे ही अमरेंद्र को पता चला कि मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ तो उस वक्त वो बहुत ज्यादा खुश हो गया था और इसीलिए उसने मुझसे शादी करने जल्दबाजी की थी। और मैंने सिर्फ उसके पैसों के लिए उससे शादी की थी, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ गरीबी में जिंदगी नहीं गुजारना चाहती थी। इसीलिए मैंने अमरेंद्र के साथ शान और शौकत के साथ एक नई जिंदगी जीने का डिसीजन लिया। आपको क्या लगता है, क्या चल रहा था वसुंधरा के शातिर दिमाग में और आगे क्या होगा अरमान और आस्था की कहानी में? जानने के लिए पढ़ते रहिए दोस्तों स्टोरी मनिया।